इंटरनेट पर ना वेगन और ये जो कट्टर मांसाहारी लोग होते हैं उनके बीच की तीखी बहस कोई नई बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, रोज का ही काम है तो।
हाँ, मतलब आज लोग अपने खान पान की आदतों को लेकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं।
हाँ, और खुद को नैतिक रूप से सुपीरियर साबित करने की होड़ लगी रहती है।
एग्जैक्टली। और ये देखकर ना ऐसा लगता है जैसे ये कोई आधुनिक युग की कोई बहुत नई समस्या है, लेकिन असल में ये बहस ना पूरे 2000 साल पुरानी है।
सच में?
बस तब मंच हमारे ये स्मार्टफोन की स्क्रीन नहीं थी, बल्कि प्राचीन रोम की सड़कें और उनके भोजन कक्ष थे, और मुद्दे बस थोड़े से अलग थे।
हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई है कि इंसान का जो बुनियादी स्वभाव है ना, वो समय के साथ ज्यादा नहीं बदलता। मतलब हम इंसानों की हमेशा से ये फितरत रही है कि हम अपनी पहचान को ना अपने खान पान, अपनी आदतों और दिनचर्या के इर्द गिर्द बुन लेते हैं।
बिल्कुल सही कहा।
और फिर जब कोई दूसरा इंसान उन आदतों से अलग व्यवहार करता है तो उसे सिर्फ अलग नहीं माना जाता बल्कि सीधा गलत मान लिया जाता है।
राइट।
एकदम गलत।
और प्राचीन रोम में ना बिल्कुल यही हो रहा था। लोग अपनी मान्यताओं के आधार पर एक दूसरे को सिरे से खारिज कर रहे थे।
तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक और न मनोवैज्ञानिक टकराव की जड़ों तक जाने वाले हैं।
बिल्कुल। आज के हमारे इस विश्लेषण का आधार डॉक्टर क्रेग कीनर का एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर है जो उन्होंने रोमियो की किताब विशेषकर अध्याय 14 और 15 के शुरुआती हिस्से पर दिया है।
और हमारा मिशन ये समझना है कि प्राचीन काल में ये जो खान पान, त्योहारों और लाइफस्टाइल से जुड़े विवाद थे ना, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है।
राइट। ये बहुत प्रासंगिक है।
हाँ, ये हमें आज के इस बहुत ज्यादा बटे हुए समाज में आपसी मतभेदों को सुलझाने और एकता खोजने का एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं।
चलिए शुरुआत करते हैं पहले बड़े विवाद से, जिसे हम कह सकते हैं खाने का झगड़ा या फूड फाइट। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि पॉल ये पत्र कोरिन्थ से रोम के लोगों को लिख रहे हैं, और यहाँ ना पूरा का पूरा विवाद खाने वालों और परहेज करने वालों के बीच सिमटा हुआ है।
विशेष रूप से वो यहूदी कोशर खाने के नियमों को लेकर।
हाँ, कोशर नियमों को लेकर।
देखिए, यहाँ जिस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो ये है कि रोमियो की किताब का ये विवाद पहले कुरिन्थियों के अध्याय 8 के विवाद से काफी अलग था।
अच्छा, अलग कैसे था?
मतलब कुरिन्थियों में मुद्दा ये था कि जो मांस मूर्तियों को चढ़ाया गया है उसे खाया जाए या नहीं, जो कि उस समय एक बहुत ही गंभीर धार्मिक संकट था।
राइट, वो एक बड़ा इश्यू था।
बिल्कुल। लेकिन रोमियो 14 में ना ये मामला उतना संगीन नहीं है। ये मूल रूप से बस जीवन शैली और सदियों पुरानी सांस्कृतिक आदतों का टकराव था। इसलिए पॉल यहाँ कोई बहुत जटिल धार्मिक सिद्धांत नहीं थोपते, बल्कि वो एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम देते हैं कि जो लोग आजादी से सब कुछ खाते हैं उन्हें उन लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए जो सख्त नियमों का पालन करते हुए परहेज करते हैं।
बिल्कुल।
और दूसरी तरफ जो लोग परहेज करते हैं उन्हें उन खाने वालों पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए।
ये ना बहुत ही सटीक बात है। मतलब इंसान इतनी जल्दी दूसरों पर फैसला क्यों सुनाने लगता है? हम अपनी पसंद को ही दुनिया का इकलौता सही तरीका क्यों मान लेते हैं?
बिल्कुल, ये इंसानी फितरत है।
ये तो वही बात होगी ना कि अगर कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है तो वो देर से उठने वालों को आलसी मानकर उन पर हावी होने लगता है।
एग्जैक्टली। और पॉल ना इसी मानवीय कमजोरी पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि पॉल व्यक्तिगत अधिकारों या सांस्कृतिक आदतों से कहीं ज्यादा ईश्वर के अधिकार को प्राथमिकता दे रहे हैं।
ईश्वर का अधिकार।
हाँ, मूल यूनानी स्रोतों में यहाँ क्रिनो शब्द का जिक्र किया गया है।
क्रिनो।
हाँ, क्रिनो, जिसका अर्थ है जज करना या फैसला सुनाना। और पॉल इसे समझाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं।
क्या उदाहरण है वो?
वे कहते हैं कि मान लीजिए अगर किसी घर में कोई सेवक काम कर रहा है तो बाहर सड़क से गुजरने वाला कोई भी अजनबी आकर उस सेवक को डांट नहीं सकता या उसके काम पर फैसला नहीं सुना सकता।
अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल
है ना? वह अधिकार केवल और केवल उसके मालिक का है। ठीक इसी तरह हर इंसान ईश्वर का सेवक है, इसलिए किसी दूसरे इंसान के आचरण पर अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार सिर्फ ईश्वर के पास है, हमारे पास नहीं।
ये ना सच में एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है, क्योंकि पहले कुरिन्थियों 9 में पॉल खुद कहते हैं कि वे सुसमाचार के लिए सबके साथ सब कुछ बन जाते हैं।
बिल्कुल।
इसका मतलब है कि वे अपनी व्यक्तिगत आजादी को किसी भी पल एक तरफ रखने को तैयार हैं ताकि वे लोगों से जुड़ सकें।
सही कहा।
और भोजन हमेशा से ही ना सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। यह तय करता है कि कोई व्यक्ति अंदर से कितना शुद्ध है। लेकिन प्राचीन रोम में यह टकराव सिर्फ क्या खाया जाए तक सीमित नहीं रहा।
नहीं, ये आगे भी बढ़ा।
हाँ, मतलब जब लोग इस बात पर लड़ रहे हों कि उनके शरीर के अंदर क्या जाएगा, तो वे बहुत जल्दी इस बात पर भी लड़ना शुरू कर देते हैं कि बाहरी दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाए।
बिल्कुल। और यहीं से ना ये बहस खाने की मेज से उठकर कैलेंडर और समय के उपयोग तक पहुंच गए।
हाँ, कैलेंडर का विवाद।
देखिए, समय और पवित्र दिनों को लेकर हुआ ये कैलेंडर का टकराव ना इतिहास के सबसे दिलचस्प विवादों में से एक है। प्राचीन काल में समय का मतलब सिर्फ दिन गिनना नहीं था।
अच्छा।
नहीं, बल्कि ये तय करना था कि ईश्वर की आराधना सही समय पर हो रही है या नहीं। उदाहरण के लिए, यहूदियों के बीच त्योहारों की तारीखों को लेकर इतने गहरे मतभेद थे कि समाज पूरी तरह से बंट गया था।
बाप रे।
एक एसेंस नाम का समूह था जो पूरी तरह से सूर्य कैलेंडर को मानता था, जबकि जो फरीसी थे वो चंद्र कैलेंडर पर चलते थे।
तो इसका जमीनी असर क्या होता था, मतलब आम लोगों पर?
इसका असर बहुत भयानक था। जरा सोचिए, अगर दो समूह अलग अलग कैलेंडर मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस दिन एक समूह अपना सबसे पवित्र उपवास कर रहा है उसी दिन दूसरा समूह कोई बड़ा जश्न मना रहा होगा।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा टकराव है।
बिल्कुल। एसेंस के नजरों में फरीसी गलत दिन त्योहार मनाकर ईश्वर का घोर अपमान कर रहे थे। ये मतभेद इतना गहरा हो गया था कि उन्होंने ना एक दूसरे से पूरी तरह से संबंध ही तोड़ लिए थे,
सिर्फ कैलेंडर की वजह से।
हाँ, और सदियों बाद ईसाइयों के बीच भी ईस्टर की तारीख को लेकर बिल्कुल ऐसा ही विवाद देखने को मिला, जहां आयरलैंड का चर्च रोम के चर्च से अलग तारीखें मानता था और दोनों खुद को ही सही मानते थे।
और अगर हम समय की बात कर रहे हैं तो साबत यानी आराम के दिन का विवाद तो सबसे बड़ा था।
ओहो, वो तो बहुत ही बड़ा था।
पुराने नियम के अनुसार शाबत का उल्लंघन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसके लिए तो मृत्युदंड तक का प्रावधान था।
सच में बहुत सख्त नियम था।
ये एक बेहद सख्त और डराने वाला नियम था। लेकिन फिर ना यीशु का नजरिया सामने आता है जो इस पूरी धारणा को ही पलट के रख देता है।
बिल्कुल।
उन्होंने शाबत के दिन बीमारों को ठीक किया, उनके शिष्यों ने खेतों से अनाज तोड़ा। यीशु ने साफ कर दिया कि शाबत का दिन जश्न मनाने, जीवन को बेहतर बनाने और आराम करने के लिए है, ना कि भूखे रहकर खुद को सजा देने के लिए।
राइट।
और बाद में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के प्रभाव और अन्य ऐतिहासिक कारणों से चर्च का आराम का दिन ना रविवार बन गया।
ये बदलाव ना बहुत महत्वपूर्ण था। और अगर आप उपवास की आदतों को देखें तो वहां भी यही दिखावा और कड़ापन आ गया था।
दिखावा कैसे?
फरीसी हफ्ते में 2 दिन पूरी तरह से बिना पानी का उपवास करते थे।
बिना पानी के?
हाँ, मेडिकल नजरिए से देखने तो ये किडनी के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। ये भक्ति से ज्यादा ना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा था।
बिल्कुल।
बाद में डिडाचे नामक एक प्राचीन दस्तावेज सामने आया जो कि शुरुआती ईसाइयों के लिए एक तरह का मैनुअल था।
अच्छा।
उसमें बाकायदा ये निर्देश दिया गया कि ईसाइयों को पाखंडियों की तरह सोमवार और गुरुवार को उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बुधवार और शुक्रवार को उपवास करना चाहिए।
रुकिए रुकिए, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि हम उनके जैसे नहीं हैं इसलिए हम अलग दिन उपवास करेंगे।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये आध्यात्मिकता से ज्यादा अपनी अलग पहचान बनाने की जिद लगती है।
बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से गुड़बाजी थी।
लेकिन इन सब न बाहरी विवादों के बीच डॉक्टर कीनर के स्रोत में एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत कहानी है।
अच्छा।
हाँ, जो सब्त या आराम के दिन के असली मतलब को समझाती है। जब डॉक्टर कीनर एक डॉक्टोरल छात्र थे ना, तब उनके पास काम का इतना भयानक बोझ था कि वो लगातार 7 दिन काम करते रहते थे।
अरे बाप रे।
उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने एक दिन भी पढ़ाई छोड़ी तो वे पीछे रह जाएंगे,
जो कि आज की दुनिया में एक बहुत ही आम बात है।
एग्जैक्टली।
लोग अपने काम को लेकर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि आराम करना उन्हें अपराध लगने लगता है।
सही कहा।
लेकिन फिर उन्होंने ना प्रयोग के तौर पर 24 घंटे का सप्त यानी पूरा आराम लेना शुरू किया और उन्होंने पाया कि ये 24 घंटे का आराम एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है।
सर्किट ब्रेकर, ये एनालॉजी थोड़ी दिलचस्प है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना।
देखिए, जब कोई बिजली का सर्किट लगातार काम करता है और उस पर लोड बहुत बढ़ जाता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है ताकि आग ना लगे।
हाँ, फ्यूज उड़ जाता है। एग्जैक्टली, इंसानी दिमाग और शरीर भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। जब कोई लगातार काम करता है तो एक हफ्ते का तनाव, थकान और मानसिक बोझ धीरे धीरे दूसरे हफ्ते में चला जाता है।
राइट, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है।
बिल्कुल, लेकिन हफ्ते में एक दिन पूरे 24 घंटे काम को पूरी तरह से बंद कर देने से वो तनाव का लूप, वो सर्किट टूट जाता है। इंसान नए हफ्ते की शुरुआत एक बिल्कुल नए और ताज़ा दिमाग से करता है।
वाओ।
और आधुनिक शोध भी ये साबित करते हैं कि इस तरह का नियमित और गहरा आराम इंसान की उम्र को लंबा कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को ना बेहतरीन बनाता है।
पर मेरा एक सवाल है यहाँ।
हाँ बताइए।
मतलब क्या आराम करने के लिए भी एक विशेष दिन तय कर देना वापस उसी सख्त नियम वाले पिंजरे में जाने जाता नहीं है? अगर पॉल आजादी की बात कर रहे हैं तो ये कहना कि तुम्हें इस दिन आराम करना ही होगा, क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है?
इससे ना एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, नियम और उसकी मूल भावना के बीच का अंतर समझना होगा यहाँ।
अच्छा।
पॉल या प्राचीन ग्रंथ जब आराम की बात करते हैं तो वे इसे एक बोझ या बंदिश के रूप में नहीं थोप रहे हैं, वे इसे जीवन देने वाले एक साधन के रूप में पेश कर रहे हैं।
एक साधन के रूप में।
हाँ, यह एक ऐसी सीमा है जो हमें खुद को खत्म कर देने से बचाती है। ये नियम हमें बांधने के लिए नहीं है, बल्कि हमें उस काम की गुलामी से आजाद करने के लिए है।
ये बात ना बहुत गहराई से समझ में आती है। मतलब जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी व्यक्तिगत दिनचर्या, उसके आराम करने के तरीके उसके अपने लिए कितने जरूरी हैं, तो अगला कदम ये सोचना होता है कि इन व्यक्तिगत कामों का समुदाय पर, दूसरों पर क्या असर हो रहा है।
बिल्कुल सही। और यहीं से पॉल का वो सबसे चुनौतीपूर्ण सिद्धांत सामने आता है जिसे रुकावट का सिद्धांत कहा गया है। आहा, ये जो सिद्धांत है ना, ये व्यक्तिगत आजादी और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी के बीच का सबसे बेहतरीन संतुलन है। पॉल बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इंसान को अपनी आजादी का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए कि उसके किसी कमजोर भाई या बहन को ठेस पहुंचे या वो अपने विश्वास से गिर जाए। पॉल यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरे मांस खाने या वाइन पीने से किसी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो मैं जीवन भर मांस नहीं खाऊंगा और वाइन नहीं पीऊंगा।
ये तो बहुत बड़ा और असाधारण त्याग है। मतलब आज के समय में लोग अपनी छोटी सी सुविधा भी नहीं छोड़ना चाहते और पॉल जीवन भर के लिए अपनी आजादी छोड़ने की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल।
स्रोत में वाइन को लेकर जो ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है ना, वो उस बात को और भी अच्छे से समझाता है।
जी, वाइन का इतिहास इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। प्राचीन काल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ना वाइन को पानी में मिलाकर पिया जाता था।
पानी मिलाकर?
हाँ, आमतौर पर दो हिस्से पानी और एक हिस्सा वाइन का अनुपात होता था। इसका मुख्य कारण नशा करना नहीं था।
तो फिर क्या था?
इसका कारण था पानी में मौजूद खतरनाक कीटाणुओं को मारना और उसे पीने लायक बनाना। इसलिए तब ये रोजमर्रा की जरूरत थी। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते ना स्थितियां पूरी तरह से बदल गईं।
तो बदलाव क्या था? क्या वाइन बदल गई थी या समाज?
असल में दोनों। डिस्टिल शराब बनाने की तकनीक आ चुकी थी जिससे शराब बहुत अधिक नशीली और घातक हो गई थी। अमेरिका और इंग्लैंड के औद्योगिक शहरों में मजदूर अपनी पूरी कमाई शराब में उड़ाने लगे थे।
अरे बाप रे।
इसके कारण परिवार बर्बाद होने लगे, घरेलू हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई और ना इसी भयानक सामाजिक पतन को देखते हुए सॉल्वेशन आर्मी जैसे समूहों ने इसका भारी विरोध किया और कई ईसाइयों ने शराब से पूरी तरह परहेज करने का फैसला किया।
देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इन स्रोतों के आधार पर किसी भी पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे।
बिल्कुल नहीं।
हम सिर्फ निष्पक्ष ऐतिहासिक तथ्यों को देख रहे हैं कि कैसी समय के साथ नियम और उनके प्रति नजरिया बदलता है। और अगर विवाद की बात करें तो स्रोत में 90s के दशक का ईसाई संगीत विवाद भी बहुत सटीक बांटता है।
ओहो हाँ, वो संगीत वाला विवाद,
जहाँ कुछ लोगों का ये दृढ़ विश्वास बन गया था कि आधुनिक संगीत की तेज बीट ना दानवी है, डेमोनिक है। लोग सचमुच रिकॉर्ड्स को जला देते थे ये दावा करते हुए कि उनमें से शैतान निकल रहे हैं।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंसान कितनी आसानी से किसी भी नई चीज को एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक खतरा मान सकता है। और ये टकराव तब और भी अजीब हो जाता है ना, जब दो अलग अलग संस्कृतियां आमने सामने आती हैं।
अरे हाँ, वो क्रॉस कल्चरल टकराव वाली कहानी, वो तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई।
डॉक्टर कीनर की पत्नी की कहानी।
हाँ, डॉक्टर कीनर की पत्नी नादीन, जो अफ्रीका के कांगो से हैं, जब वे फ्रांस गई तो उनके मेजबानों ने उनका स्वागत करने के लिए ना उन्हें जिंदा और रेंगती हुई कच्ची सीपियां खाने को दी।
ओए होए,
जरा उस दृश्य की कल्पना के लिए, जैसी उन सीपियों पर नींबू निचोड़ा जाता, वे तड़पने और सिकुड़ने लगती थी और फिर उन्हें कच्चा ही निकलना होता था।
उफ, ये किसी भी इंसान के लिए ना बहुत असहज करने वाला अनुभव हो सकता है।
बिल्कुल,
नादीन ने स्वाभाविक रूप से उन्हें खाने से साफ मना कर दिया, भले ही इससे फ्रांसीसी मेजबानों को बहुत ठेस पहुंची हो।
राइट,
ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक संस्कृति का सामान्य भोजन दूसरी संस्कृति के लिए ना एक बहुत बड़ी रुकावट या शॉक बन सकता है।
तो ये हमें ना एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पे लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ इंसान की अपनी आजादी और मान्यताएं हैं और दूसरी तरफ समुदाय और दूसरों की भावनाएं हैं। अगर हम दूसरों के अजीब रीति रिवाजों को देखकर असहज हो जाते हैं तो अपनी खातिर दूसरों को असहज करना भी तो सही नहीं है।
बिल्कुल सही बात है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे बाहरी नियम कि क्या खाना है, कब आराम करना है, पीछे छूट रहे हैं, तो फिर ईश्वर के राज्य का असली मतलब क्या बचता है?
यह पूरी चर्चा का ना सबसे अहम पड़ाव है। रोमियो 14:17 में पॉल इसका एकदम सटीक उत्तर देते हैं।
क्या कहते हैं वो?
वे कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने के नियमों का कोई बही खाता नहीं है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा ना धार्मिकता, शांति और आनंद को जीने के बारे में है।
पर यहाँ शांति का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ जाना है या लड़ाई ना करना तो नहीं हो सकता?
बिल्कुल नहीं, यहाँ शांति का अर्थ है रिश्तों में सक्रिय रूप से शांति कायम करना। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे को बनाने और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, न कि अपने अधिकारों की जिद में एक दूसरे को गिराने का।
राइट,
यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई किसी नियम को मान रहा है तो वो उसे ना अपनी समझ के अनुसार ईश्वर के लिए ही मान रहा है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम आनंद को ना सिर्फ एक मूड या भावना समझ लेते हैं।
हाँ बिल्कुल,
मतलब मौसम अच्छा है तो आनंद आ रहा है, काम बिगड़ गया तो आनंद खत्म हो गया। लेकिन यहाँ आनंद को एक सक्रिय अवस्था के रूप में पेश किया गया है, न कि केवल एक मूड के रूप में।
राइट, और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो गलातियों की किताब के 5वें अध्याय में भी इसका जिक्र है, जहां इसे पवित्र आत्मा के फल के रूप में बताया गया है।
फल के रूप में?
हाँ, जैसे एक अच्छे पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं और फल स्वाभाविक रूप से आता है, वैसे ही ये आनंद भीतर से पैदा होता है। पॉल का अपना जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
वो कैसे?
रोमियो 9 में वे अपने लोगों के लिए एक बहुत ही गहरे दुख और पीड़ा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक स्थायी आनंद बना रहता है।
वाओ,
यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, बल्कि ईश्वर पर उनके अटूट भरोसे की ना बुनियाद पर टिका था। जब ये अंदरूनी धार्मिकता और शांति आ जाती है तो इंसान दूसरों के खाने पीने या कैलेंडर की तारीखों को लेकर कभी झगड़ा नहीं करता।
यानी जब बाहरी विवादों की जगह अंदरूनी शांति ले लेती है, तब जाकर हम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं जिसके लिए पॉल ये सब कुछ लिख रहे थे।
बिल्कुल,
और वो है विविधता के बावजूद एक संपूर्ण और अटूट एकता। और इस एकता को ना सिर्फ एक सिद्धांत के रूप में नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसे समझाने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी दिया गया।
जी, रोमियो 15 के अनुसार यीशु मसीह का स्वयं का जीवन इसका अंतिम उदाहरण है। पॉल बताते हैं कि यीशु ने कभी भी खुद को खुश करने या अपनी सुविधा के लिए ना जीवन नहीं जिया। इसके लिए वो भजन संहिता 69 का संदर्भ देते हैं। यीशु ने यहूदियों की यानी खतना किए हुए लोगों की सेवा की ताकि पूर्वजों से किए गए वादे पूरे हों,
लेकिन उनका काम वहीं नहीं रुका, उन्होंने अन्य जातियों की भी ना उसी समर्पण के साथ सेवा की।
ये देखना सच में बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे पॉल ने अलग अलग प्राचीन किताबों के हिस्सों को, जैसे पुराने नियम के भजन संहिता, व्यवस्था विवरण और यशाया को एक साथ गूथ कर सर्वसमावेशकता का इतना मजबूत और अकाट्य तर्क पेश किया है।
बिल्कुल,
वह ये साबित कर देते हैं कि अन्य जातियां भी उसी ईश्वर की स्तुति करेंगी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ इतिहास की सूखी कहानियां नहीं हैं।
बिल्कुल नहीं है। पहले कुरंथियों 10 में भी पॉल स्पष्ट करते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ और इतिहास की घटनाएं हमें निर्देश देने, हमारा मार्गदर्शन करने और मुश्किल वक्त में हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए लिखी गई हैं।
राइट।
ये सारा ज्ञान, ये सारे नियम और धर्म ग्रंथ इंसान को आपस में बांटने या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं दिए गए हैं। इसका एकमात्र और अंतिम उद्देश्य ना हमें जोड़ना है।
तो आखिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इन सारे विवादों, नियमों और सिद्धांतों का असली मतलब क्या है?
इसका सबसे गहरा मतलब ये है कि एकता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम सभी मशीन की तरह एक जैसा सोचें, एक जैसे कपड़े पहने या एक ही थाली का खाना खाएं।
मशीन नहीं बनना है।
बिल्कुल। सच्ची एकता का अर्थ है अपने गहरे मतभेदों को स्वीकार करते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करना। अगर कोई कमजोर है या किसी की मान्यताएं हमसे अलग हैं, तो अपनी आजादी और अपने अधिकारों का जश्न मनाने के बजाय पीछे हटकर उस व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना कहीं ज्यादा बड़ी और आध्यात्मिक बात है।
क्या अद्भुत सफर रहा ये। मतलब प्राचीन रोम में खाने की मेज और त्योहारों की तारीखों से शुरू हुए एक साधारण से विवाद से लेकर आपसी समझ विकसित करने, सर्किट ब्रेकर की तरह अपने मानसिक तनाव को कम करने के महत्व को समझने और दूसरों की गहरी भावनाओं का सम्मान करते हुए सच्ची एकता खोजने तक।
हाँ, और ये ज्ञान ना आज के दौर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है।
बिल्कुल।
आज के समय में जहाँ समाज वैचारिक रूप से अत्यधिक बटा हुआ है, चाहे वो राजनीति हो, पर्यावरण के मुद्दे हो या फिर खान पान और जीवन शैली, वहाँ ये प्राचीन सिद्धांत बहुत ही व्यवहारिक समाधान देते हैं।
हाँ।
दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में तनाव से बचने के लिए ठहर कर आराम करना, ये दोनों ही चीजें हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाती हैं।
सच में इतिहास का काम सिर्फ हमें बीता हुआ कल दिखाना नहीं है,
नहीं।
बल्कि वो हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जाने का रास्ता भी दिखाता है।
बिल्कुल सही कहा।
इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना मैं एक नया और गहरा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा।
हाँ बताइए।
आज की दुनिया में जहाँ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ही हमारे नए जमाने के खाने की मेज और हमारे नए फोरम बन चुके हैं, जहाँ रोज विचारों का भारी टकराव होता है।
बिल्कुल।
अगर इंसान इस डिजिटल दुनिया में पॉल के उस रुकावट के सिद्धांत को लागू करना शुरू कर दें कि हम कभी अपने किसी पोस्ट, कमेंट या ऑनलाइन व्यवहार से किसी दूसरे के रास्ते के रुकावट नहीं बनेंगे, तो ये इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से कैसे बदल कर रख देगा?
वाओ, ये तो बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है,
है ना?
हाँ, ये इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल ना ऑनलाइन कैसे करते हैं।
बिल्कुल, ये सच में एक बहुत ही विचार उत्तेजक बात है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। ज्ञान की शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।